Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. Is Upanishad ke 6 prakaranon mein se 3 प्रकरणों की चर्चा कल तक हो चुकी है। चतुर्थ प्रकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। प्रश्न उपनिषद है मुंडक उपनिषद की व्याख्या, इसलिए मुंडक उपनिषद में उक्त अर्थ का ही विस्तार से निरूपण इस उपनिषद में होगा। मुंडक उपनिषद में बताई गई है दो प्रकार की विद्याएं, एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या का निरूपण करने के लिए शुरू वाले 3 प्रश्न थे। पहले प्रश्न से अपरा विद्या के फल का निरूपण हुआ, द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न से अपरा विद्या का जो उपासनात्मक अंश है उसका निरूपण हुआ। प्राणात्म भाव की प्रापक प्राण की अहंग्रह उपासना का वर्णन इन दो प्रकरणों में हुआ। अपरा विद्या का समापन हो गया, फल भी बता दिया, साधन भी बता दिया। अपरा विद्या साध्य साधनात्मिका है। अब जो परा विद्या है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इस मुंडक वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञात कि परा विद्या वह है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है, ये कहा गया। वह अक्षर यानी एक जो अव्याकृत अक्षर है, यानी अज्ञान है, उस अज्ञान से भी पर, कारण उपाधि से भी पर अक्षर, उसे कहा गया तद अक्षर। वो है परमात्मा, और उस परमात्मा की प्राप्ति जिस विद्या से होगी उसे कहा जाता है पराविद्या। और परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप है परमात्मा के अप्राप्ति की भ्रांति का हेतुभूत अविद्या की निवृत्ति। तो जिस विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो उस विद्या को कहा जाएगा पराविद्या। अविद्या की निवृत्ति होती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से, इसलिए इस वृत्ति का नाम ही पराविद्या है, जिसको उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ कहा जाता है। वही अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति हुई पराविद्या उपनिषद। और ग्रंथ को भी पराविद्या या उपनिषद कहा जाता है, यह वृत्ति जिस शब्द से उत्पन्न हो उस शब्द प्रमाण को भी गौण रूप से पराविद्या कहा जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से पराविद्या तो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और इस पराविद्या का सफल वर्णन करने के लिए ये 3 प्रश्न जो बाकी के हैं, चौथा, पांचवा और छठवा, ये आ रहे हैं। तो इन 3 प्रश्नों के द्वारा विस्तार से पराविद्या को बताया जाएगा। आख्यायिका के अनुसार प्राचीन शालादि छह ऋषि गए हुए हैं ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के आचार्य पिपलाद जी के पास, और पिपलाद जी से अपनी जिज्ञासा रखी उनके सामने। आचार्य पिपलाद जी की आज्ञा के अनुसार एक वर्ष तक श्रद्धा तप और ब्रह्मचर्य साधनों के साथ वे रहे उनके आश्रम में, और फिर उन छह ऋषियों में से एक एक ऋषि क्रम से प्रश्न पूछते जा रहे हैं, आचार्य पिपलाद जी उनका उत्तर देते जा रहे हैं। पहला प्रश्न किया कबंधी नाम के ऋषि ने, दूसरा प्रश्न भार्गव नाम के ऋषि ने किया, तीसरा कौशल्य नाम के ऋषि ने किया, चौथा प्रश्न करने वाले ऋषि हैं बताए जा रहे हैं गार्ग्य। तो चौथे प्रश्न का जो प्रथम वाक्य है चौथे प्रकरण का, इसमें आचार्य पिपलाद जी के प्रति ऋषि गार्ग्य ने किए हुए पांच प्रश्न बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे पांच प्रश्न हैं और इन पांच प्रश्नों का उत्तर तथा ये पांच प्रश्न मिलकर के चौथा प्रकरण हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि अथह एनम शौर्यायनी गार्ग्य पप्रच्छ भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। इन प्रश्नों को पूछा, पप्रच्छ शब्द का अर्थ है पूछा, किसने तो गार्ग्य, गार्ग्य पप्रच्छ, गार्ग्य ने पूछा। तो गार्ग्य ने कब पूछा, कौशल्य ऋषि के द्वारा जो प्रश्न किए गए थे उनका उत्तर आचार्य पिपला जी दे रहे हैं उसके बीच में ही पूछा या पूरा उत्तर होने के बाद पूछा। तो इसलिए अथ शब्द बता रहा है कि अनंतर, अनंतर का अर्थ है जो कौशल्य ऋषि ने प्रश्न किए थे छह, उन छह प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपलाद जी दे चुके उसके अनंतर। जब प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ उसके बाद आचार्य पिपलाद जी से आज्ञा लेकर के गार्ग्य ऋषि ने उनसे पूछा कि मेरी भी अपनी जिज्ञासा है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूछूं। आचार्य पिपलाद जी ने कहा पूछ सकते हैं। तब ये श्रुति कह रही है कि अथह एनम शौर्यायनी गार्ग्य पप्रच्छ, इसमें एनम शब्द का अर्थ है आचार्य पिपलाद जी, एनम का अर्थ होता है इनको, इनको यानी किनको, तो जो उत्तर दे रहे हैं उनको। वहां प्रश्न करने वाले छह ऋषि हैं श्रोता के रूप में बैठे हुए, विद्यार्थी के रूप में बैठे हुए और आचार्य के रूप में बैठे हुए हैं पिपलाद जी। तो जो आचार्य के रूप में बैठे हैं पिपलाद जी उन्हीं को एनम इस सर्वनाम से ग्रहण करना। तो एनम का अर्थ निकलेगा आचार्य पिपलाद जी को गार्ग्य पप्रच्छ, गार्ग्य ने पूछा। गार्ग्य का विशेषण है शौर्यायनी, ये उनके पूर्वजों के नाम के साथ जुड़ा हुआ उनका नाम है। जैसे अर्जुन को पांडव कहा जाता है, भारत कहा जाता है, भरतवंशी होने से भारत, ऐसे सूर्यवंशी होने से सूर्यवंशी होने से सौर्यायनी ये बन जाता है। तो प्रश्न बताए जा रहे हैं गार्गी ऋषि के पांच अलग अलग, कि भगवान ये तस्मिन पुरुषे कानी स्वपन्ति, ये पहला प्रश्न है। हे भगवान, ऐसा आचार्य पिपला जी को संबोधित करके गार्ग्य कहते हैं कि ये जो पुरुष है, तो पुरुष शब्द कहीं आत्मा के लिए, कहीं शरीर के लिए, कहीं अलग अलग आत्मा की उपाधि के लिए आता है। यहां पर पुरुष शब्द आया है इस स्थूल शरीर के लिए, कार्यक्रम संघात के लिए। इसलिए अस्मिन पुरुषे का अर्थ है ये जो कार्यकरण संघात है, ये कार्यकरण संघात रूप जो पुरुष है, इसे पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुष की उपाधि होने से। इसे गीता के 15वें अध्याय में भी क्षर उपाधि और अक्षर उपाधि को पुरुष शब्द से कहा है ना, वो पुरुषोत्तम की उपाधि होने से, वो भी पुरुष है। अक्षर है कारण शरीर और क्षर है कार्य रूप उपाधि, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्षर कहलाता है। लेकिन उनको भी भगवान ने कहा कि ये पुरुष के तरह पुरुष है। क्यों पुरुष है? पुरुष की उपाधि होने से। द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरस चाक्षर एवच, ये लौकिक दो पुरुष है उपाधि रूप क्षर और अक्षर। वहां पुरुष शब्द जिस क्षर रूप उपाधि के लिए आया है, उसी क्षर रूप उपाधि को बताने के लिए यहां पर भी पुरुष शब्द है। इसलिए अस्मिन पुरुषे शब्द का अर्थ निकलेगा इस कार्यकरण संघात रूप पुरुष में अनेक तत्व हैं। सूक्ष्म शरीर में ही 17 है ना, 5 प्राण, 5 कर्मेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि। तो इनमें से इन सभी का समूह मिलकर के सूक्ष्म शरीर है और उसी को पुरुष शब्द से कहा जा रहा है। तो इस सूक्ष्म शरीर रूपी पुरुष में कौन हैं जो सो जाते हैं? कानी स्वपन्ति, ये जो 17 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर अंदर अंतःपाती, इनमें से कितने तत्व हैं जो स्वाप करते हैं? स्वाप कहते हैं सुसुप्ति को, और स्वाप शब्द से दोनों को लिया जाता है, निद्रा को भी और स्वप्न को भी। तो कानी स्वपन्ति का अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इन 17 तत्वों में से कौन से तत्व हैं जो जागृत अवस्था में अपना कार्य करते करते थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं का अर्थ है अपने कार्य से उपरत हो जाते हैं, अपना कार्य करना बंद कर देते हैं थक करके। ऐसे कौन है का मतलब ये प्रथम प्रश्न से पूछा जा रहा है कि जिसके कार्य करना बंद करने पर जागृत अवस्था नहीं है ये माना जाता है, स्वाप है, जागृत अवस्था से अतिरिक्त अवस्थाएं, तो वे कौन हैं जिनके अपने अपने व्यापार से उपरत होने के बाद नहीं कहा जा सकता कि यह पुरुष जग रहा है, सो रहा है ऐसा कहा जाता है। वे कौन हैं जिनके व्यापार करते समय तो माना जाता है जाग रहा है, और जिनके व्यापार से उपरत होने के बाद माना जाता है कि वो सो रहा है, जाग नहीं रहा है। ऐसे इस सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्वों में से कौन है ये पूछा गया। तो जागृत अवस्था का लक्षण होता है, इससे पूछा गया कि जागृत अवस्था किसकी है, जागृत अवस्था अभिमानी कौन है, जिसके व्यापार से युक्त होने पर जागृत अवस्था मानी जाएगी और जिसके व्यापार से उपरत होने पर जागृत अवस्था का अभाव माना जाएगा, वो हो जाएगा जागृत अवस्था का धर्मी, जागृत अवस्था उसी का धर्म माना जाएगा। इसी को पूछा गया है इस प्रथम प्रश्न के द्वारा आचार्य पिपला जी से, गार्गी ऋषि के द्वारा पूछा गया कि हे भगवान एतस्मिन पुरुषे कानी स्वपंती, कि जागृत अवस्था किसका धर्म है, जागृत अवस्था का आश्रय कौन है धर्मी, ये इस प्रश्न का तात्पर्य अर्थ निकलेगा। तो जागृत अवस्था का लक्षण आता है पंचदशी में कि इंद्रियों से अर्थ उपलब्धि जिस अवस्था में होती है उस अवस्था को कहा जाता है जागृत अवस्था। मन बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा रूपादि विषयों की उपलब्धि कर लेता है जिस अवस्था में, वह अवस्था है जागृत अवस्था। का मतलब चक्षुरादि इंद्रिया जब अपना अपना व्यापार करती हैं, चक्षु इंद्रिय का व्यापार है रूप ग्रहण, श्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्रहण करती है, तो त्वग इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करती है, घ्राण गंध का और वाक रसन इंद्रिय रस का, ये है ज्ञान इंद्रियों का व्यापार, और वाक का व्यापार है बोलना, हाथ का व्यापार है लेन देन करना, पैर का व्यापार है गमनागमन करना, ये सब कर्मेंद्रियों के व्यापार तथा ज्ञान इंद्रिय के व्यापार कब होते हैं, जागृत अवस्था में। और जब ये अपना अपना व्यापार करते करते थक जाते हैं, यदि अभी से लेकर के शाम 7 बजे तक प्रश्न उपनिषद पर प्रवचन चलता ही रहे तो आप सुनते ही जाएंगे, 1-1.5 घंटे बाद फिर कर्ण इंद्रिय थक जाएगा, और थक जाएगा तो सोना आ जाए शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। का मतलब ये है कि ये इंद्रिया एक सीमित ही कार्य कर सकती है, इनकी अपनी सीमा है, और उसी सीमा तक अपना अपना व्यापार करते हैं, और जब उनकी वो सीमा पार हो जाती है थक जाते हैं, व्यापार करना बंद कर जाते हैं, सो जाते हैं, तो जागृत अवस्था का लक्षण हुआ इंद्रियर अर्थोपलब्धिर जागृतम, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण जिस अवस्था में होता है वह अवस्था है जागृत अवस्था। तो प्रथम प्रश्न से उस जागृत अवस्था का धर्मी पूछा गया, वो धर्मी यानी आश्रय कौन है, जागृत अवस्था किसकी मानी जाए। ये जो तीन अवस्थाएं हैं प्रसिद्ध, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ये आत्मा की अपनी अवस्थाएं हैं स्वाभाविक या आत्मा के उपाधि की अवस्थाएं हैं। पराविद्या का निरूपण करना है ना, इसलिए यदि आत्मा की अवस्थाएं हो जाएगी ये तो आत्मा सविशेष सिद्ध होगा। पराविद्या का विषयभूत जो आत्मा है वह निर्विशेष है, तो आत्मा का निर्विशेषत्व ज्ञापन करने के लिए पराविद्या का अर्थ ही है निर्विशेष आत्मस्वरूप की अनुभूति, वो पराविद्या है। निर्विशेष परमात्मा मैं हूं, इस अनुभूति का नाम पराविद्या है। और उस पराविद्या की व्याख्या करने के लिए ये आचार्य गार्ग्य ने, ऋषि गार्ग्य ने आचार्य पिपलाद जी से प्रश्न किया है। तो पहला प्रश्न है कि जागृत अवस्था ये किसका धर्म यानी किसकी विशेषता मानी जाएगी। जिसकी विशेषता होगी वह सविशेष होगा, जागृत अवस्था वाला होगा। तो ये आत्मा की नहीं है, आत्मा की उपाधिभूत जो क्षर पुरुष है यानी कार्य उपाधि है। और कार्य उपाधि में भी ये जो सूक्ष्म शरीर रूप कार्य उपाधि है और उस सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्वों में से जो ये 10 तत्व हैं, इंद्रिय नामक, बाह्य इंद्रिय नामक जो 10 तत्व, इनका व्यापार होगा तो जागृत अवस्था मानी जाती है और इनका व्यापार बंद हो जाता है तो जागृत अवस्था नहीं मानी जाती। तो जिनका व्यापार होते हुए जागृत अवस्था है, जिनके निर्व्यापार अवस्था में जागृत अवस्था का अभाव माना जाता है, माना जाएगा कि जागृत अवस्था का धर्मी यानी आश्रय वही है, वह आत्मा की उपाधिभूत इंद्रिया है। और इंद्रियों की, बाह्य इंद्रियों की ये जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था के अवस्थी वे बाह्य इंद्रिया है और उस उपाधि से युक्त आत्मा में इंद्रियों की जागृत अवस्था रूप धर्म का आरोप वैसा होता है जैसे स्फटिक के पास में रखे हुए लाल पुष्प की लालिमा, ये पुष्प का धर्म है, स्फटिक का नहीं है, लेकिन समीपता के कारण आरोप होता है स्फटिक में लालिमा का। और ये व्यवहार होता है लोहित स्फटिक, लाल स्फटिक है, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो वस्तुतः स्फटिक लाल नहीं है, लालिमा स्फटिक का धर्म नहीं है, स्फटिक की उपाधि जो लाल पुष्प है उसका वो धर्म है और आरोपित हुआ स्फटिक में। ऐसे ये जो इंद्रिया है इनकी जागृत अवस्था धर्म है, लाल पुष्प स्थानीय इंद्रिया है और लालिमा स्थानीय जागृत अवस्था है और आत्मा स्फटिक रूप है। तो स्फटिक में जैसे इंद्रियों की, पुष्प की लालिमा आरोपित हो रही है, ऐसे लाल पुष्प स्थानीय इंद्रियों की जागृत अवस्था रूप लालिमा स्फटिक रूप जो आत्मा है अवस्था रहित, उसमें ये अवस्था आरोपित होती है। ये उत्तर दिया जाएगा। तो आत्मा का जागृत अवस्था धर्म नहीं है,